इस संदेश की श्रृंखला को डॉक्टर बिल माउंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका नाम है बाइबल की 52 मुख्य घटनाएं। और अधिक सामग्री के लिए आप कृपया जाएं www.biblicaltraining.org पर। प्रभु बोझ, लगभग 4000 वर्ष पहले परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी और इस प्रतिज्ञा में परमेश्वर ने उसे भूभाग देने की और साथ में अनगिनत संतानें देने की बात कही थी। कई पीढ़ियों के बीत जाने के बाद उसकी उन संतानों को यूसुफ के दिनों में मिस्र देश में भेजा ताकि अकाल के दिनों में वह जीवित बचे रहें। 400 वर्षों के बाद अब्राहम के वंश के लोग मिस्र देश में फिरौन के गुलाम हो गए, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा ताकि उसके द्वारा परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल लाए। परमेश्वर ने मिस्र देश पर बड़ी विपत्तियों को भेजा, लेकिन अब तक फिरौन का मन कठोर ही बना रहा और उसने इसराइल के संतानों को जाने नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर ने 10वीं बार अब तक की सबसे बड़ी विपत्ति को उन पर भेजा। अब तक फिरौन इसराइलियों के बालकों का वध करवाता रहा, इसलिए अब परमेश्वर सारे मिस्री परिवार के पहलौठों को मारेगा। परमेश्वर जानता है कि इस विपत्ति के द्वारा फिरौन का कठोर हृदय टूट जाएगा और वह इसराइलियों को मिस्र देश से जाने देगा। अतः परमेश्वर ने मूसा से लोगों को ले जाने की तैयारी करने को कहा। इसके बारे में निर्गमन 12:3 के आरंभ में पढ़ते हैं, इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम में से हर एक खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। दूसरे शब्दों में, मेमने को खाने के लिए आपके परिवार में यदि पर्याप्त सदस्य हैं तब तो यह एकल परिवार कार्यक्रम होगा, और यदि आपके परिवार में इतने सदस्य नहीं हैं कि पूरे मेमने को खा सकें तो अपने पड़ोसी को इसमें शामिल करें, परंतु लोगों की पर्याप्त तादाद हो ताकि पूरा मेमना खा सकें। पद शय गोदली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं, और उनके मांस की उसी रात आग में भूज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पद के साथ खाएं। आगे 11वें पद में उनके खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब पहलौठों को मारूंगा और मिस्र देश के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। ध्यान दीजिए, फसा का पर्व एक पारिवारिक मामला था। यह पर्व अलग अलग या व्यक्तिगत रूप से मनाने के लिए नहीं था, परंतु उन्हें यह परिवार या परिवारों में मनाना था। सभी प्रतीकों पर ध्यान दीजिए, उन्हें कड़वे सागपद के साथ खाना था क्योंकि उन्होंने मिस्र में बुरा बुरा समय व्यतीत किया था। उन्हें अखमीरी रोटी खानी थी जिसे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। उन्हें कपड़े पहनकर तैयार रहना था, वे जाने के लिए तैयार थे। यह इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर उन्हें जल्दी छुड़ाएगा। परंतु इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो एक ही बात है जो होने वाली घटना नहीं है। परमेश्वर उनसे बताता है कि यह एक वार्षिक समारोह है जो परमेश्वर के उद्धार के बड़े काम को स्मरण दिलाने में सहायक था। बच्चे तुमसे पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इसराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, और इसी कारण उसके फसा का यह बलिदान किया जाता है। और यह 26 पद में पाया जाता है। और यह 10वीं विपत्ति के आने की तैयारी है, जय अपने बड़े भयानक रूप से आई और मृत्यु का दूत इसराइलियों के घरों को छोड़कर गुजरता है और परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से बाहर लाकर बचा लेता है। यह एक ऐसी घटना है जिसे निर्गमन के नाम से कहा जाता है, अर्थात बाहर निकलना, और पूरे पुराने नियम के इतिहास में यह घटना परमेश्वर के उस बड़े उदार के कार्य का उदाहरण बन गई कि किस तरह से उसने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा लिया। इसराइल की संतानें सीने पर्वत की तरफ बढ़ती हैं, जहां पर वह एक वाचा में प्रवेश करते हैं। उनके परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। परमेश्वर अपनी तरफ से उनके साथ एक समझौता करता है। वह कहता है, मैं उनका परमेश्वर हूंगा। दूसरे शब्दों में इस वाचा और संबंध में वे परमेश्वर के साथ एक वाचा में बांधे रहे हैं कि कुछ करने के लिए प्रतिबंध है कि वह उनका परमेश्वर होगा, और लोगों की तरफ से वे बात के लिए समर्पित हैं कि वे उसके लोग होंगे। वे कुछ बातों के लिए समर्पित हैं ताकि वे परमेश्वर के साथ संबंध में बने रहें, ताकि वह समुदाय में एक दूसरे के साथ रह सकें। और जय संबंध और जय समुदाय मुख्य रूप से 10 आज्ञाओं से परिभाषित किया गया है जो उन्हें सीने पर्वत पर मिली थी। वहां पर परमेश्वर की व्यवस्था पत्थर की बाहरी पट्टियों पर लिखी हुई थी। 8 सदियां या बहुत ज्यादा समय बीत गया है। तब से फसा का पर्व सैकड़ों बार मनाया गया है, परंतु जिर्मिया और यहेजकेल के दिनों में परमेश्वर 2 अद्भुत प्रतिज्ञाएं करता है। जिर्मिया 31:31 में परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा कहता है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से लाया। जदपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा उन दिनों के बाद भविष्य के किसी समय में इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह जय है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर भी लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यह यहोवा की वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। जिर्मिया के द्वारा परमेश्वर की एक नई वाचा स्थापित करने की प्रतिज्ञा करता है। अब मूसा के द्वारा बांधी गई वाचा पुरानी हो गई है और नई वाचा के लक्ष्य पुराने वाचा के समान ही है। मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहेगा। परमेश्वर की यह इच्छा तो हमेशा से ही है कि परंतु नई वाचा में जो भिन्नता है वह यह है कि वाचा अब बाहरी नहीं कहीं दूर ना लिखी जाकर यह उनके हृदय पर लिखी जाएगी, यह आंतरिक होगी। और परमेश्वर का बाग यह है कि वह पापों को क्षमा करने के लिए समर्पित है, और लोगों का बाग और हमारा बाग यह है कि हम परमेश्वर को जाने। दूसरे शब्दों में जो क्षमा परमेश्वर हमें देता है उसमें एक नए रिश्ते का दरवाजा खुल जाता है जिससे हम परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर यह कैसे करेगा? परमेश्वर नई वाचा को कैसे बांधेगा? दोनों यहेजकेल के द्वारा भी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा नए संबंध को स्थापित करने की प्रतिज्ञा करता है। यहेजकेल 36 में परमेश्वर क्षमा के बारे में बात कर रहा है, और 26 पद के आरंभ में परमेश्वर यह प्रतिज्ञा करता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर की तरफ से यह एक नई वाचा बांधता है। वह आत्मा को देकर वह ऐसा करेगा जिसके द्वारा हम उसके नियमों का पालन करेंगे, और हमारा भाग यह है कि हम पवित्र आत्मा को यह अनुमति देंगे कि वह हमें चले, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई सामर्थ्य से हम उसके नियमों पर चल पाएंगे। यह नियम या विधियां केवल मार्गदर्शक ही हैं, और यह परमेश्वर के साथ और समुदाय में एक दूसरे के साथ कैसे संबंध रखें, परमेश्वर का बाग और हमारा बाग। यीशु फसा के पर्व की फिर से विचेतना करते हैं। यीशु फसा के पर्व की फिर से विवेचना करते हैं। अंतिम बोध जिर्मिया यहेजकेल के समय से 6 और सदियां गुजर चुकी हैं, और उस रात में हम पहुंचते हैं जो मृत्यु से पहले यीशु की अपने चेलों के साथ आखिरी रात थी, और अब वह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे हैं। और यह भोजन केवल साधारण भोजन ही नहीं है, परंतु वास्तव में वह निर्गमन 12 अध्याय के फसे के पर्व को मना रहे हैं। और फसा मनाने की प्रक्रिया में यीशु फसा के पर्व की फिर से व्याख्या करते हैं, जैसे कि वह कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि हम निर्गमन के उत्सव को मना रहे हैं, मैं जानता हूं हम परमेश्वर के उद्धार के महान कार्य के उत्सव मना रहे हैं, परंतु परमेश्वर निर्गमन से भी बहुत बड़ा और महान कार्य करने वाला है। और फिर यीशु फसा के पर्व की व्याख्या करते हैं, वह पीछे मिस्र की ओर इशारा ना करके वह आगे आने वाले क्रूस की तरफ इशारा करते हैं। जब यीशु फसा के पर्व की व्याख्या दे रहे हैं तो हम बिल्कुल स्पष्ट रीति से समझने लग जाते हैं कि नई वाचा में परमेश्वर अपने बाग को किस प्रकार से पूरा करेगा, और हम यह भी समझ जाते हैं कि हम पापी हैं और अपने पापों के कारण परमेश्वर से भटक कर अलग हो गए हैं, और इस भटकने का दंड मृत्यु है। परंतु क्रूस के ऊपर परमेश्वर का मेमना हमारे और आपके पापों के दंड में मरने जा रहा है। यीशु के मृत्यु के द्वारा ही नई वाचा की स्थापना संभव होगी, और जैसा जिर्मिया ने कहा और जैसे यहेजकेल ने कहा, वह यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा ही अपने आत्मा को भेजेगा, संभव होगी। और इस हिस्से का वर्णन के सुसमाचारों में नहीं है, परंतु पौलस की पत्री कुरंथियों में भी किया गया है। पहला कुरंथिया 11 अध्याय में पौलस कलीसिया को यह निर्देश दे रहे हैं कि उन्हें फसा का पर्व किस तरह से मनाना चाहिए। पहला कुरंथिया 11:23 में पौलस लिखते हैं, क्योंकि यह बात प्रभु से मुझे पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु येशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया उसने रोटी ली, यह फसा के पर्व की रोटी है, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के ये यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। यीशु कह रहे हैं कि फसा की रोटी उनकी देह है जो क्रूस पर मृत्यु के द्वारा तोड़ी गई है। जब आप और हम इस नए फसा के पर्व को मनाते हैं जिसको प्रभु ने फिर से समझाया है, तो हम अखमीरी रोटी का प्रयोग करते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वे बिना खमीर के होते हैं, क्योंकि यह हमें निर्गमन 12 अध्याय के फसा के पर्व की ऐतिहासिक महत्व को समझाते हैं। कई बार हम पाव रोटी को तोड़कर इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम उन टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो खाते समय टूटते हैं। ये सभी चीजें हमारी सहायता करती हैं, और कि हम याद रखें कि मसीह की देह हमारे लिए क्रूस पर तोड़ी गई। अब यह निर्गमन 12 अध्याय की तरफ इशारा नहीं करती है, परंतु अब यह क्रूस की मृत्यु की ओर इशारा करती है। फसा का कटोरा मसीह के लहू की तरफ इशारा करता है। पापों की क्षमा के लिए उसका खून क्रूस पर मृत्यु दौरान बहाया गया है। जब यीशु कहते हैं यह कटोरा नई वाचा है, तो यह कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु के द्वारा नई वाचा बांधी गई है। क्या परमेश्वर के साथ नया संबंध संभव हो गया है? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी कारण से कुछ कलीसियाएं फसा के पर्व प्रभु भोज को वर्ष में केवल एक ही बार मनाती हैं, क्योंकि पर्व एक वार्षिक उत्सव था, और वास्तव में इसमें जाना एक अद्भुत कर्म है, क्योंकि यह कलीसियाएं इन्हीं पर आधारित होती हैं। और उन कलीसियाओं में बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को रात्रि प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। पहले के समय में आपको वास्तव में कार्ड दिया जाता था कि यदि आप इन तीन सभाओं में उपस्थित होते थे तो स्वयं को पूरी तरह से तैयार करते थे और गंभीरता से इस बात के महत्व को समझते थे कि मसीह ने क्रूस पर क्या किया, तभी आप रविवार की सुबह प्रभु भोज में हिस्सा ले सकते थे। विरोधाभास। कलीसिया इतिहास में प्रभु भोज को लेकर बहुत से विरोधाभास रहे हैं, और आनंद का जय अनुभव पर्व अक्सर असंतोष, विवाद, विभाजित कलीसियाओं और मतों का कारण रहा है। एक विवाद इस वाक्यांश के लिए भी है कि यह मेरी देह है, और जैसा मती 26 में पढ़ते हैं वहां पर यीशु कहते हैं यह मेरा खून है, इसका क्या अर्थ है? इस प्रश्न से कलीसियां विभाजित हो गई हैं। रोमन कैथोलिक कलीसिया में एक शिक्षा है जिसे तत्व परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है कि तत्व में परिवर्तन हो जाता है, और रोटी और दाखरस यीशु का भौतिक शरीर और लहू में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण रोमन कैथोलिक कलीसिया की सभा में सेवक प्रभु भोज के टुकड़े को अपनी जीभ पर रखता है। इसी कारण से वह प्याले को भी नहीं पास करते हैं, वे उसे पकड़े रहते हैं कि कहीं मसीह की देह और खून गिर ना जाए। परंतु दुखद बात यह है कि इस कारण से उन्होंने बहुत सी बातों को जोड़ दिया है। उन्होंने इसे मांस का नाम दिया है जो कि एक बलिदान है। मेरे चाचा प्रत्येक सुबह उस बलिदान की सेवा करते हैं, वे हमारे सुबह यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, मानो यह कह रहे हों कि क्रूस पर उसकी मृत्यु मेरे पापों के लिए पर्याप्त नहीं थी। लूथर के समय में जब सुधारवाद आया, लूथर ने कैथोलिक सिद्धांतों का विरोध करके द्वितीयवाद की बात को सिखाया। लूथर ने यह सिखाया कि मसीह की देह और लहू उस तत्व में और उसके साथ उपस्थित रहते हैं, इसलिए रोटी तो रोटी ही बनी रहती है और दाखरस तो दाखरस ही बना रहता है, तो भी भौतिक शरीर इसमें और इसके साथ उपस्थित रहता है। जॉन कॉल्विन इसका अनुसरण सभी सुसमाचार कलीसियाएं करती हैं। उन्होंने रोमन कैथोलिक की शिक्षा को पूरी तरह से तोड़ दिया और यह सिखाया कि प्रभु भोज में मसीह की आत्मिक उपस्थिति रहती है। उन्होंने सिखाया कि रोटी और दाखरस मसीह की मृत्यु की ओर इशारा करते हैं और प्रभु भोज मसीह की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। किसी और संभावना को स्वीकार करना मेरे लिए कठिन बात है। यीशु उन 11 पके यहूदियों के साथ बैठे हैं जिन्होंने कभी भी खून को चखा नहीं है। उन्होंने रोटी और दाखरस का प्याला देकर कहा है कि यह मेरा शरीर है और यह मेरा खून है। अरे मैं तो यह सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने इसे किसी और रीति से समझा होगा और यीशु का भी कोई अन्य इरादा नहीं होगा। इसलिए मैं इस वाक्य की प्रतीक मात्रक व्याख्या पर इतनी मजबूती से विश्वास करता हूं कि यहां तक कि मेरे लिए कुछ सीमाएं तो हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, जब वे स्कूल में थे तो उनके कार्य का यह भी हिस्सा था कि वह चर्च की देखभाल करें और उनकी जिम्मेवारी यह होती थी कि वह प्रभु भोज को तैयार करें। तो वह शनिवार के दिन रोटी को लाते थे और वह उसकी परातों को काट कर छोटे छोटे सफेद पाव टुकड़ों में करते थे और वह प्रभु भोज होता था। और वह एक एतवार को मैं वहां पर भोजन के लिए था और उनसे बातचीत कर रहा था। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और एक बहन ने मुझसे कहा कि क्या प्रभु भोज की कुछ रोटी बची है, मैं उसे बाहर रखकर सूखने दूंगी और फिर मैं उसे क्राउटाउन ब्रेड में बना भोजन के लिए प्रयोग करूंगी। मुझे यह बात बड़ी अटपटी सी लगी कि और मैं सलाद खा रहा था और वह खत्म करना बड़ा कठिन लग रहा था, जबकि धर्म वैज्ञानिक रूप से मैं उसके निर्णय को दोषी नहीं ठहरा सकता था। हाँ, इस वाक्य ने कि यह मेरी देह है और यह मेरा लहू है निश्चित रूप से कुछ विवाद तो खड़े कर दिए हैं। नए फसे के पर्व को लेकर भी कुछ विवाद हैं। कई बार हम इसे प्रभु भोज कहते हैं क्योंकि यह तो प्रभु भोज है, यह प्रभु का चेलों के साथ अंतिम भोजन था। कभी कभी परंपरागत रूप से इसे युरावस्तिस भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन्यवाद, क्योंकि यीशु ने रोटी तोड़ने से पहले धन्यवाद दिया। और निश्चित रूप से नए फसा के समय में हम यीशु को धन्यवाद दे सकते हैं कि जो कुछ भी उसने हमारे लिए क्रूस पर किया है। कई बार इसे सहभागिता कहते हैं क्योंकि पहला कुरिन्थियों पौलुस यह सिखाते हैं। यह वह समय होता है जब हम आपस में प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं। पवित्र शास्त्र में इसे कोई और नाम नहीं दिया गया क्योंकि यह सभी बिंदु एक महत्वपूर्ण सच्चाई को बताते हैं। इस बात में भी विवाद है कि प्रभु भोज किस तरह से मनाया जाए। लोग इसे अलग अलग तरह से मनाते हैं। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब हम पूरे साल भर प्रभु भोज को मनाते हैं तो यह एक परंपरागत कर्मकांड बनकर ना रह जाए। प्रभु भोज तो इन सभी बातों के ऊपर सर्वोपरि है और मैं चाहता हूं कि आप इसे जानें। इसलिए लगभग प्रत्येक प्रभु भोज की सहभागिता में हम भिन्न भिन्न रूप से चीजों को करते हैं, क्योंकि यदि आप किसी चीज को 3 बार एक ही तरह से करेंगे तो यह एक रोचक नियम जैसा बन जाता है। बस 3 बार आप किसी चीज को करिए तो वह फिर उसे उसी तरह से किया जाएगा। इसलिए हम विभिन्न तरह से करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यह कार्य के विषय में नहीं है, परंतु यह इसका प्रतिनिधित्व करता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है, परंतु मैं प्रभु भोज के पारंपरिक तौर तरीकों को पसंद नहीं करता हूं। मुझे यह पसंद नहीं कि जब हम प्लेटों को गैलरी में ले जाते हैं। यह विधि कोई अनिवार्य नहीं है, इसमें कुछ भी गलत या सही नहीं है, मैं इसे समझता हूं। लेकिन प्रभु भोज देने की पारंपरिक विधि से मेरी यह हताशा है कि इसमें अलग व्यक्तियों के रूप में हमें से व्यवहार किया गया है। हम पंक्तियों में बैठे रहते हैं और प्लेट आती है, हम खाते पीते और आगे पास कर देते हैं। जबकि यह एक पारिवारिक मामला है, यह समय होता है जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। और कितनी बार जब प्रभु भोज के दौरान शोर होता है तो हम कहते हैं चुप। जब यह ऐतिहासिक घटना एक मिसाल है जिसमें हम अपने बच्चों को मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को बताते हैं, यदि हम पूर्ण रूप से बाइबल संपन्न है तो हमें उस समय बोलकर सीखना और सिखाना है। बाइबल के अनुसार तो यह एक भोजन होना चाहिए, तो फिर हमें मेज पर एक दूसरे के साथ सटकर बैठना चाहिए जैसा यूहन्ना यीशु के सीने की तरफ झुका रहता था और उनसे प्रश्न पूछता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें समूहों में इकट्ठे होना चाहिए और आरंभिक कलीसिया में तो ऐसा ही होता था। और जैसा हम करते हैं, आरंभिक कलीसिया कभी ऐसा नहीं करती थी। वे अगापे प्रेम भोज करते थे और भोज के अंत में वे प्रभु भोज करते थे। यह एक पारिवारिक समय था और शिक्षा का समय था। मैं जानता हूं कि यह परंपराएं बहुत गहरी हैं और मेरी आशा है कि कभी ना कभी हम इन मानवीय परंपराओं को तोड़कर स्वतंत्र हो जाएंगे और हम एक परिवार के रूप में प्रभु भोज ले सकते हैं। जहां तक कि जब बहुत सारे परिवार हों तो भी हम परिवार के रूप में सेवा कर सकते हैं। हो सकता है कि प्रभु भोज कैसे देना है इसके ऊपर बहुत सारा विरोधाभास हो सकता है कि हमें थोड़ा परिवर्तन लाना पड़े, यह तो ठीक है। क्या आप जानते हैं कि सुसमाचार ये एवेंजेलिकल के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कि यीशु परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठाकर ले गया, और इस रोटी और इस प्याले से हम उसकी विजय और पाप और मृत्यु के ऊपर उसकी विजय का उत्सव मनाते हैं। इस बात में तो कोई विरोधाभास नहीं है और हम यह प्रचार करते हैं। प्रभु बोझ की तीन समय संरचनाएं वर्तमान। पहला क्रंथियां 11 अध्याय के 26 पद में पॉलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मैं एक घटना को बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। जब मैं बाइबल कॉलेज की एक कक्षा में था तो मेरे प्रोफेसर ने प्रभु भोज के तीन समय संरचना के बारे में हमें बताया था। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि प्रभु भोज में हम प्रचार करते हैं। वह अभी वर्तमान समय में है, अपने शब्दों के द्वारा हम प्रचार करते हैं। हम जब कहते हैं कि यह मसीह की देह है, यह मसीह का लहू है, और जब हम खाते हैं पीते हैं तो हम अपने कार्यों के द्वारा प्रचार करते हैं। हम सबको प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मेरे और आपके पापों के लिए मर गया। प्रभु भोज के वर्तमान समय संरचना में यह बिल्कुल स्पष्ट रीति से सुसमाचार का प्रचार है। हम प्रचार कर रहे हैं कि हम प्रभु की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं, भूतकाल या अतीत। दूसरे शब्दों में प्रभु भोज में हम अतीत की तरफ वापस यानी क्रूस पर यीशु की मृत्यु को देखते हैं और हम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हैं। और हम यह जानते हैं कि उद्धार केवल यीशु ही के द्वारा है, क्योंकि केवल यीशु ने ही हमारे पापों के लिए कुछ किया। कन्फ्यूशियस क्रूस पर नहीं मरे, बुद्ध भी क्रूस पर नहीं मरे, मैं क्रूस पर नहीं मरा। उद्धार तो केवल यीशु ही के द्वारा है, क्योंकि उन्होंने पाप की कीमत चुकाई है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि यह हमारे पाप हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, और उन पापों के दंड में हमें मरना चाहिए, परंतु उसकी दया से हमारे स्थान पर कोई खड़ा हुआ। तब परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से और अपने आप को हमारे स्थान पर दे दिया, और किसी और नाम से उद्धार ही नहीं है। इसलिए जब आप और हम प्रभु भोज लेते हैं तो यह प्रचार करते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले मर गया और कोई नहीं। भविष्य। तीसरी समय की संरचना यह है कि हम प्रभु की मृत्यु का जब तक वह ना आए प्रचार करते हैं। प्रभु भोज में हम भविष्य की तरफ देखते हैं और हम यह कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर का नागरिक नहीं हूं, और मिट्टी के जिस ढेर पर हम खड़े हैं वह मेरा घर नहीं है। हम तो स्वर्ग के नागरिक हैं, और जैसे पौलुस फिलिपियों को लिखता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और जैसे पहला पत्रस कहता है, मैं अपने पृथ्वी पर अपना जीवन ऊपर आंखें उठाकर जी रहा हूं। मैं सृष्टि से प्रेम ना करके इसके सृजनहार से प्रेम करके जीवन बिता रहा हूं, और मैं अपने जीवन में यीशु का इंतजार कर रहा हूं कि वह आकर मुझे घर ले जाए। जय प्रभु बोस के भविष्य का पहलू है। जब मेरी बेटी रेचल की मृत्यु हो गई तो मैंने स्वयं से यह वाचा बांधी थी कि प्रभु बोझ हमेशा एक ही तरह से नहीं होगा, क्योंकि प्रभु बोझ मुझे बहुत ही व्यक्तिगत रूप से याद दिलाता है कि यह मेरा घर नहीं है और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी तो बहुत से प्रिय जन भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर हम यह सोचते हैं कि यही पृथ्वी हमारा घर है तो ऐसा सोचना बड़ा ही दयनीय जीवन जीना है। जय जीवन जीने का बहुत ही दयनीय ढंग है, जबकि स्वर्ग में हमारे लिए बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। हम वर्तमान में प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हैं और अतीत में भविष्य में जब वह आकर हमें घर ले जाएगा, यही तो सब कुछ है। प्रभु बोझ मसीही जीवन जीने की तस्वीर है। मैं अपनी बात इससे बंद करता हूं कि इस सप्ताह मैं जो जानने पाया कि प्रभु बोझ लेना मसीही जीवन की एक शक्तिशाली तस्वीर है। मैं इस बात को इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने शिष्यता के विषय पर बहुत परिश्रम किया है। मैं चाहता हूं कि सब बातें आपके दिमाग में बड़े संतुलन से बनी रहें। प्रभु बोझ मसीही जीवन की बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। परमेश्वर हमसे एक वाचा का और व्यक्तिगत संबंध रखने की इच्छा रखता है। वह चाहता है आप और मैं हम उसके लोग हों और वह हमारा परमेश्वर हो। तो परमेश्वर अपनी तरफ से कुछ कार्यों को करने के लिए समर्पित है। क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा वह मुझे बचाने के लिए समर्पित है। मैं अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। जब मैं प्रभु भोज में सहभागी होता हूं तो मैं इस बात का उत्सव नहीं मनाता हूं कि परमेश्वर ने मेरे पापों की कीमत को चुकाया। मैं इस बात का उत्सव मना रहा हूं कि वह अपने अनुग्रह और दया से हमें पापों की क्षमा प्रदान करता है। मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं लेकर आऊं। उदार तो परमेश्वर से ही संबंधित है, यह उसका हिस्सा है, परंतु वह वही नहीं रुक गया क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा भी अपना कार्य करता है। यहेजकेल में हमें एक नया मन देने की प्रतिज्ञा की गई है, परमेश्वर मेरे अंदर अपना आत्मा डालेगा और उसकी आत्मा मुझे सामर्थ्य देगी। उसका आत्मा हमें और आपको सामर्थ्य देगा ताकि हम उसके आत्मा की अगुवाई में उसके अनुसार चल सकें। आत्मा से सामर्थ्य पाकर वह आत्मा हमारे अंदर इच्छा को उत्पन्न करता है और फिर वह उन इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ्य देता है। इसलिए आत्मा की सामर्थ्य में यह एक उत्सव है और प्रतिदिन मैं इस बात का अंगीकार करता हूं कि इसे अपने आप से नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने में असमर्थ हूं, परंतु यह इस बात का उत्सव है कि मुझे एक नया हृदय दिया गया है। जब मुझे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सामर्थ्य मिली, वही हमारी अगुवाई करता है, वही हमें सक्षम बनाता है कि आप और हम आत्मा के अनुसार चलें, ताकि हम शरीर का अभिलाषाओं को पूरा ना करें। यह हिस्सा परमेश्वर का कार्य है। हमारा भाग जहां हिस्सा प्राप्त करना है प्रभु भोज में, तो यही होता है और हम प्राप्त करते हैं। हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर ने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं और हम प्रभु भोज लेने के द्वारा यह कहते हैं, आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाकर मेरी इच्छा यह है कि हम उस संबंध में और उस समुदाय में रहें जिसे क्रूस पर यीशु की मृत्यु के द्वारा स्थापित किया गया है। मसीही जीवन की यह अद्भुत तस्वीर है कि परमेश्वर ने मुझे बचाने का अपना कार्य पूरा कर दिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, परमेश्वर ने ही मुझे सशक्त बनाया है। मुझे इसकी सख्त जरूरत है, परंतु मेरे हिस्से का कार्य यह है कि परमेश्वर ने जो अपनी आत्मा के वरदानों से सुसज्जित किया है उनका प्रत्युत्तर दूं और एक साथ मिलकर ऐसा जीवन बिताऊं जिससे वह प्रसन्न होता है और फिर एक दिन अपने घर जाऊं। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह ना आए प्रचार करते हो।